Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Acha, humko sagun paramatma kyon achha lagta hai? Ek mahatma the to मतलब वो उपासक वृत्ति के थे, तो उसमें दोष नहीं है उनका, तो प्रवचन वेदांत का सुना, फिर बोले कि महाराज हमारी समझ में ना आवे ये। मैंने कहा क्यों? कि हमारा ब्रह्म से काम ना चले। मैंने कौन सा काम नहीं चलता है भाई, कि ब्रह्म तो कुछ किसी की सुनता नहीं है, ब्रह्म तो जो है ठूठ है, पत्थर की तरह से है। हमें तो ऐसा भगवान चाहिए जो हमारे सुख दुख को सुने, हमारे सुख दुख को बढ़ावे घटावे दर है, तो हमारा काम ना चले। तो जो काम चलाने के चक्कर में है वो सुख को ही महत्व देते हैं। काम चलाना माने सुख से रहना। और वेदांती जो होता है वो सत्य का पक्षपाती होता है। पारदर्शी ने किसी महात्मा से कहा कि हमको आप ज्ञान दीजिए, तो उन्होंने कहा तुम बोलो, हम बताएंगे कि तुम ठीक सोचते हो कि नहीं। बोले हमने तो सोच रखा है, अब आप बोलिए। तो बोले नहीं, जिज्ञासु को बोलना चाहिए। तो उन्होंने नास्तिक पक्ष ले लिया महाराज जी ने। नास्तिक पक्ष माने शून्यवाद का पक्ष लिया। तो वो महात्मा बोले कि ये तो शून्यवाद हो गया। शब्द उनके शून्यवाद के नहीं थे, मगर उसमें से शून्यवाद निकलता था। तो बोले ये तो शून्यवाद हो गया। तो महाराज श्री ने कहा कि अगर सत्य शून्यवाद ही हो तो मुझे तो शून्यवाद चाहिए, और कितना भी बढ़िया होए और सत्य ना हो तो वो मुझे नहीं चाहिए। माने बुद्धि जो है, जो सत्य की पक्षपात नहीं होती है, स्वाभाविक ही सत्य की पक्षपात नहीं है, लेकिन अगर हम जानबूझ करके अपनी बुद्धि से सत्य को ही चाहें तब हम वेदांत के अधिकारी होते हैं। सच्चाई क्या है? ये सारी दुनिया मरी जा रही है नारायण, रोजाना पैदा कीड़े मकोड़े की तरह से सब हो रहे हैं, मर रहे हैं, सुखी दुखी। आखिर ये सब क्यों चल रहा है? क्या इसके पीछे रहस्य क्या है? अब शास्त्र की बात रखते हैं तो लोग कहते हैं ये तो शास्त्र में लिखा है, हम नहीं मानते इसे, हमें तो तर्क से दिखाओ या प्रत्यक्ष दिखाओ। तो तर्क करोगे तो शून्यवाद में पहुंचोगे, और प्रत्यक्ष का आग्रह करोगे तो नास्तिकवाद में पहुंचोगे नारायण। तो कहीं ना कहीं तो आपको किसी न किसी की बात माननी पड़ेगी। तो पूर्व पक्षी कहता है कि इस आनंदमय पुरुष को ही ब्रह्म मान लो, और आनंद जो सुख आ रहा है बस यही है असली सार सर्वस्व। शायद परसों बताया था कि पंचदशी के जो अंतिम पांच प्रकरण हैं, उनको पढ़ के यही भ्रम होता है कि ये वृत्ति में जो आनंद आता है, चाहे वो विद्या से आता हो, चाहे ध्यान से आता हो, चाहे विषयों से आता हो, वृत्ति में जो आनंद आता है बस ये ब्रह्म है। उन पांचों चैप्टर्स का नाम ब्रह्मानंद, विद्यानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद के ही सब रूप बताए। तो ये भ्रम हो जाता है। पंचदशी का ये तात्पर्य नहीं है, लेकिन पढ़ने वालों को ऐसा भ्रम हो जाता है। और यहां भृगुवल्ली इसके बाद में आती है, ब्रह्मानंद वल्ली के बाद में। ये तो ब्रह्मानंद वल्ली चल रही है ना, इसके फिर अगला चैप्टर जो है वो भृगुवल्ली का है। तो वहां जब आनंद में कोष का विचार करते हैं तो भृगु जी महाराज कहते हैं कि बस यही है, अब आगे विचार करने की जरूरत नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि अगर आनंद में कोश ही पर ब्रह्म न होता तो फिर वो भृगु जो है विचार से क्यों उपरामता को प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि उपनिषद को भी ये इष्ट है कि आनंद को ही सर्वोपरि बताया जाए। तो शंकराचार्य भगवान ने इसमें भाष्य में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं इस बात को काटने के लिए। ये आनंदमय कोश जो है ये ब्रह्मानंद नहीं है। कितना भी उत्तम से उत्तम आनंद सुख आपको प्राप्त हो जाए, प्रिय रूप हो, मोद रूप हो, प्रमोद रूप हो, समाधि में भी एक आनंद आता है, सुषुप्ति में भी एक आनंद आता है, विषयों में भी एक आनंद आता है, विद्या पढ़ने में भी एक आनंद आता है, भगवान का ध्यान करने से नाम लेने में भी एक आनंद आता है, ये सब आनंदमय कोश हैं। तो बोले फिर तो जो है आपको परमानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई कि ना? अब इसमें कारण बताते हैं क्यों। तो एक कारण तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ये जैसे अन्न में कोश में मैं लगा हुआ था, अन्न का विकार, प्राण में माने प्राण का विकार, मनो में माने मन का विकार, विज्ञान में माने विज्ञान का विकार, ऐसे ही आनंदमय तो ये भी आनंद का विकार है। अगर मयट प्रत्यय यहां पर प्राचुर्यार्थ करेंगे तो ये प्रश्न उठेगा कि चार में तो आपने विकारार्थ कर लिया और एक में प्राचुर्यार्थ कर रहे हो, तो ये विसंगति हो जाएगी। तो श्रुति जिस अर्थ में शुरू से प्रयोग कर रही है मयट प्रत्यय का, उसी अर्थ में आनंदमय में भी है। एक बात। दूसरी बात, पूर्व पक्षी कहता है कि आनंद का तो विकार हो ही नहीं सकता है। आनंद तो उसको कहते हैं जो एक सा रहे, तो उसमें क्या विकृति होगी। तो बोले अच्छा बताओ तो फिर ये आनंद में कोश में जो आनंद आता है क्या वो एक सा रहता है? तो वो तो नहीं रहता है। तो इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मानंद तो है ही नहीं। वो अगर वो ब्रह्मानंद होता तो कभी उसमें स्खलन नहीं होता। आज जो चीज अच्छी लगती है कल अच्छी नहीं लगती है, अरे एक घंटे के पीछे अच्छी नहीं लगती, सतत प्रयोग करने से अच्छी नहीं लगती। तो वो कहते हैं कि ये शास्त्र का सिद्धांत आप समझ लो, सुख जितना उत्पन्न होता है वो कर्म और उपासना का फल होता है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगर जीवन में आप सुख चाहते हो, माने अनुभूत सुख चाहते हो, चाहे वो लौकिक सुख हो और चाहे वो मन का सुख हो, बुद्धि का सुख हो, आत्मसुख की चर्चा नहीं हो रही है, समाधि का सुख हो, तो कोई ना कोई आपको कर्म या उपासना करनी पड़ेगी। तो वेदांती लोग जो हैं, जो अत्यंत वैराग्यवान हो, वो तो सुख की उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन जिनमें अत्यंत वैराग्य नहीं है वो सुख की उपेक्षा कर नहीं सकते। इन्हें इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि हमें सुख नहीं चाहिए। एक दिन खाने को न मिले ना तो सब मालूम पड़ जाए, मन का न मिले तो जो है शिकायती राम हो जाते हैं, रहने को न मिले तो शिकायती राम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है सुख तो चाहिए जीवन में। तो सुख चाहिए तो कर्म और उपासना का आश्रय पकड़े रहना पड़ेगा, अगर सुख चाहिए तो। तो शंकराचार्य जी ने लिखा कि जितना भी सुख आदमी को मिलता है वो कर्म और उपासना का फल होता है, चाहे इस जन्म में आपने किया हो और चाहे पहले जन्म में किया हो, ये उसी का फल मिल रहा है। तो ये आनंदमय कोष में जो सुख प्राप्त होता है, ये आपके पूर्वकृत कर्मोपासना का फल है, इसलिए इसको विकार बोलते हैं। ब्रह्म में कोई विकार हो गया, ब्रह्म का स्वरूप जो आनंद है उसमें कोई विकार हो गया, ऐसा नहीं है। बस विकार अगर आनंद का मानना ही है तो कर्म उपासना की जो उपाधि लगी हुई है उसके कारण इसमें तारतम्य होता है, हेर फेर होता है। छोटा आनंद, बड़ा आनंद, थोड़े समय का आनंद, ज्यादा समय का आनंद, इस जगह में आनंद, उस जगह में आनंद, देश काल वस्तु से, तो ये सब कर्मोपासना का फल है। इसलिए इसमें मयट प्रत्यय विकार बोलते हैं, वरना तो अगर आपको देश सब देशों में सब काल में सब वस्तुओं से सुख होता हो तो आप ब्रह्म स्वरूप का आनंद आपको प्राप्त है। ये कहना तो आसान है, क्या हमको तो सब एक सा ही लगता है, छाती पे हाथ धर के सोच लेना कितनी सच्चाई है। अनुकूलता का चिंतन सबको है और सब अपने अपने संस्कार से बंधे हुए हैं, इसलिए कर्मोपासना जीवन में जिस आश्रम के अनुसार हो, जिस वर्ण के अनुसार हो, वो बनी रहनी चाहिए। कल शाम आपको सुनाया था ना, अस विचार पंडित मोहि भजहिं, पायउ ज्ञान भगत नहीं तजहिं। ये सुख के लिए सुख की उत्पत्ति भी करते हैं और दुख से रक्षा भी करते हैं। तो हमारा काम नहीं चलता है, ये बात इसीलिए होती है कि कर्मोपासना छोड़ करके जो ज्ञान के चक्कर में पड़ते हैं, बोले हमें कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, तो फिर पत्थर बना देंगे भगवान अगले जन्म में। अरे क्यों नहीं करना, जब प्राण चल रहा है तुम्हारे शरीर में तो कुछ ना कुछ तो करोगे। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। ये तो मजबूरी सबको कर्म करना पड़ता है, तो व्यवस्थापूर्वक कर्म करो, और किसी न किसी की तो उपासना करनी पड़ती है। अपने से बड़ा मान लो कोई अपना गुरु ही सामने हो तो उसकी उपासना करनी पड़ती है, देवता हो उसकी उपासना करनी पड़ती, मिनिस्टर हो और को तो छोड़ो, और उससे अपना काम निकालना हो तो उसकी जो है चारों तरफ घूमना पड़ता है, उसके उसके जो लग्गे भग्गे हैं उनके साथ भी जो है ऐसे भीगी बिल्ली की तरह से बर्ताव करना पड़ता है। बड़े बड़े सेठों को हम मिनिस्टर के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए देखना पड़ता, क्यों, क्योंकि उनसे कुछ लेना है। तो परमेश्वर तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता है आपसे, वो तो देने ही के लिए खड़ा हुआ है। मिनिस्टर तो खुश हो जाएगा तब कुछ दे सकता है, लेकिन भगवान के तो पास जो है वो कहते हैं ये सब देने ही के लिए है, कोई मैं कंजूस तोड़े ही हूं, तुम मांगो मैंने दिया, कोई प्री कंडीशंस कोई नहीं। ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। जहां संकल्प उदय हुआ है भगवान हमको ये दे दो, भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन जा पर जाकर सत्य स्नेहु सोता ही मिले। सत्य स्नेह नहीं है तो भगवान थोड़ा रुक जाते हैं, दे तो देते हैं लेकिन सत्य स्नेह माने संकल्प जो है वो दृढ़ होना चाहिए। तो कहते हैं इसलिए ये आनंदमय पुरुष जो है ये ब्रह्म नहीं होता, और आनंदमय कोष जो है ये ब्रह्मानंद नहीं है। अब कहते हैं कि जो ये तो पांचवा अनुवाक चल रहा है ना, तो आठवें अनुवाक में कहते हैं कि एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति। आठवें अनुवाक दूसरे मंत्र में है, बोले ये आनंदमय को प्राप्त उपसंक्रमण करता है। उपसंक्रमण माने चल के जाता, तो उपसंक्रमण करता है। तो बोले अगर ये ब्रह्म ही हो तो फिर क्या ब्रह्म ब्रह्म में चल के जाता है? विज्ञानमय कोश जो है वो आनंदमय कोश में चल के जाता है। अब तुम कह रहे हो कि ये ब्रह्म ही है, तो फिर ब्रह्म ब्रह्म में ही चल के जाता है, यही तो अर्थ निकला। तो ये तो आत्माश्रय दोष कहलाएगा, इसलिए आनंदमय ब्रह्म नहीं है। एक और कारण देते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, तो उसमें अवयव हैं कि नहीं है, हिस्से हैं कि नहीं, सावयव है कि वो निरवयव है। जो सर्वव्यापक वस्तु होती है उसमें कोई हिस्से नहीं होते हैं, अवयव नहीं होते हैं। और जब उसमें हिस्से ही नहीं है तो इसका ये सिर है और इसका ये दायां पंख है, ये बायां पंख है। अगर आनंदमय को ही ब्रह्म बताना है होता तो इसमें इसके सिर आदि की कल्पना क्यों की जाती है? इसका अर्थ ही है कि इन सब का निषेध करने के लिए ही, अवयवों का निषेध करने के लिए ही हर कोश में अवयव की स्थापना की गई है। तो ये ब्रह्म नहीं हो सकता। अच्छा, फिर सातवें अनुवाक की एक और श्रुति है, अदृश्य अनात्म्य अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते। बोले ये ब्रह्म क्या है कि ये अदृश्य है और आनंदमय कोश तो सबके अनुभव में आता है, क्योंकि सुख है ना, तो सुख तो वृत्ति का विषय बनता है। तो ये तो सबको अनुभव है कि ये सुख है कि ये दुख है, और यहां कह रहे हैं कि ब्रह्म तो जो है वो अदृश्य है। अदृश्य माने आंख का विषय नहीं है, ये नहीं, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। जो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है उसकी वृत्ति भी नहीं बन सकती है। कल्पित, या तो वो वस्तु कल्पित होगी और या तो केवल शब्द माने भीतर से ही कोई पूर्व ज्ञान के आधार पर उसकी वृत्ति बनेगी। तो ये तो सबको अपरोक्ष है, आनंदमय, इसलिए इसको ब्रह्म नहीं माना जा सकता। सातवें में ही पहली श्रुति है, असन्नेव स भवति असद ब्रह्म चेद वेदो, अस्ति ब्रह्मेत चेद वेदो संतमेनम ततो विदुः। जो कहता है ब्रह्म नहीं है वो तो सबसे पहले ये कहना चाहता है कि मैं ही नहीं हूं, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म तो एक ही वस्तु है। अगर कोई कहता है कि ब्रह्म नहीं है तो पहले यूं बोल कि मैं नहीं हूं। जो ब्रह्म को नहीं बता रहा है वो बताने वाला भी नहीं है क्या? बोले तो मैं ही बता रहा हूं, तो तुम कौन हो? नारायण, तुम ही ब्रह्म हो, यही तो उपनिषद का सिद्धांत है। इसलिए ब्रह्म नहीं है ये तो खामी खां की बात है, तो शून्यवाद का इससे खंडन हो जाता है। अब तुमने ये कहा कि भृगुवल्ली में उसने भृगु ने यह जाना, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, ये आनंद ही ब्रह्म है, और वो विचार करने से उपराम हो गया, फिर आगे उसने कोई विचार नहीं किया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आनंदमय को ही उसने ब्रह्म जान लिया, उसने आनंद को ब्रह्म जाना, ये शब्द है वहां। अब देखो ये शब्द वकील लोग जब अपना अपना पक्ष रखते हैं ना, तो एक ही संविधान होता है, एक ही एक्ट होता है, लॉज जितने हैं सबकी भाषा सबकी दोनों वकीलों की एक सी होती है, लेकिन कोई वकील किसी शब्द को पकड़ता है, कोई वकील किसी शब्द को पकड़ता है, उससे जैसा अपना सिद्ध करना हो। तो बोले वहां तो लिखा है कि आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, उसने ये जाना कि आनंद ब्रह्म ही है। तो आनंद को ब्रह्म जाना कि आनंदमय को ब्रह्म जाना, वहां तो ये लिखा हुआ है कि आनंद को ब्रह्म जाना, इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उसने आनंदमय को ब्रह्म जान लिया इसलिए उपराम हो गया। उपराम इसलिए हो गया कि उसने आनंद को अपना स्वरूप जान लिया। जब मेरा स्वरूप ही है तो अब उसमें जानना और क्या बाकी है। आनंदमय तक तो ये रहता है कि अन्य में आनंद है, अन्य से आनंद है, ये जितना आनंद मालूम पड़ता है ना, ये कहां मालूम पड़ता है? इंद्रियों में मालूम पड़ता है कि प्राण में मालूम पड़ता है कि मन में मालूम पड़ता है कि बुद्धि में मालूम पड़ता है कि चित्त में मालूम पड़ता है? माने किस जगह पर ये गुदगुदी होती है आनंद की, कौन से कोष में होती है? तो आनंदमय कोष में, माने जो उसका भोक्तृत्व स्वरूप है आत्मा का, उसमें ही गुदगुदी का नाम सुख है। और वो गुदगुदी क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले हमने सुख बुद्धि कर रखी है, इसलिए होती है। बस वैसी परिस्थिति बन गई तो गुदगुदी हो गई, नहीं बनी तो विपरीत गुदगुदी हो गई। पतंजलि जी ने क्या परिभाषा दी सुख दुख की? अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूलता प्रतिकूलता का संस्कार यदि न हो तो सुख दुख में भेद नहीं कर सकते। तो आनंदमय कोष जो है ये रिलेटिव फील्ड का कोष है, इसमें जिसको आप सुख मानते हो वो उसी से सुख मिलता है, और जहां पर आप सुख नहीं मानते हो वहां सुख नहीं मिलता है, वो भी आनंदमय कोष है। दुख भी आनंदमय कोष है और सुख भी आनंदमय कोष है, लेकिन ये जो ब्रह्मानंद है इसमें सुख भी आनंद है और दुख भी आनंद है। बोले कोई दृष्टांत देकर समझाओ। तो देखो एक चांदी का रुपया ले लो, चांदी का इसलिए कह रहा हूं सिक्का जो होता है, क्योंकि नोट में तो ये बात मिलेगी नहीं। अच्छा पहला, अब चांदी के सिक्के का मैं समझता हूं 500-600 रुपया कितना होगा, काफी पैसे बढ़ गए उसके, माने उसमें जो चांदी है उसका मूल्य है ना। अब वो चाहे उस पर विक्टोरिया की मोहर लगी हो और चाहे एडवर्ड की मोहर हो, नारायण, लेकिन है चांदी, चांदी के पैसे होते हैं। तो ये जो हमारा अंतःकरण है इसमें ये ज्ञान रूप है, इसको पहले समझ लो। अंतःकरण क्रिया तो है इसमें, लेकिन ये ज्ञान रूप है, सत्व गुण से बना हुआ है। और इसमें मोहर जो लगी हुई है, हेड और टेल जिसे आप बोलते हो, तो एक तरफ हेड की मोहर लगी हुई है, एक तरफ टेल की मोहर लगी हुई है। अब जो विक्टोरिया के भगत होंगे वो कहेंगे हमें तो विक्टोरिया वाला दो, गांधी जी वाला दो, और जो एडवर्ड के भगत होंगे वो कहेंगे कि हमें एडवर्ड वाला सिक्का दो। लेकिन जब सिक्का आपको मिलेगा तो हेड के साथ टेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हेड और टेल तो जो है उस सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन वो सिक्का क्या है? वो तो चांदी है। तो असल में जो वस्तु है जो ब्रह्म वस्तु है वो तो आनंद रूप है, वो तो चांदी है, और उसमें अनुकूल वेद नियम और ये सुख का ठप्पा हेड हो गया, और प्रतिकूल वेद नियम और ये टेल का टप्पा हो गया नारायण। तो कोई संस्कार वश, लेकिन दुख में भी सुख होता है, इसे कम लोग अनुभव करते हैं। अगर ये समझ में आ जाना कि दुख में भी सुख है, तो कोई दुख व्यापेगा नहीं। कभी दुख के पीछे सुख आ जाता है, और कभी सुख के बाद सुख पीछे सुख दुख आ जाता है। तो यहीं पूरा कर देते हैं इसको। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।